ओम शांति, ओम शांति। सत गुरुवार की गुड मॉर्निंग। और आज विजयदशमी है, सत्य की असत्य पर विजय, बुरे पर अच्छाई की विजय, रावण पर राम की विजय। तो हम सब उस सच्चे राम के विजयी बच्चे हैं, तो हम सब विजयी हैं। तो आप सभी विजयी आत्माओं को बहुत 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 बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो। और आज सतगुरु बाबा ने बहुत बड़ी बात कह दी है, इस समय सारी दुनिया रोगी है ना, रोगी, तन के भी रोगी तो मन के भी रोगी, सारी दुनिया रोगी है, तत्वों सहित सब रोगी है। तो बाबा कौन है? बाबा है रूहानी सर्जन। तो वो रूहानी सर्जन आकर के सबका ऑपरेशन कर देते हैं, है ना, सर्जरी कर देते हैं रूहानी सर्जन आकर, सारे रोग खत्म कर देते हैं, पांच विकारों रूपी रोग सबको लगे हुए हैं। तो बाबा आकर सबको निरोगी बना देते हैं, इसलिए सतयुग में कोई रोग नहीं होगा, कोई दुख नहीं होगा। तो वो दुनिया कैसी होगी और अभी की दुनिया कैसी है, वो बाबा ने आज कॉन्ट्रास्ट बताया है। ऐसा रूहानी सर्जन आकर ऐसी सर्जरी करते हैं जो सबको निरोगी बना देते हैं। वहां तो न कोई जेल होगा, न अपराध होगा, वहां क्या क्या नहीं होगा जो यहां पर है, ये भी एक बहुत बड़ी लिस्ट बन सकती है। तो आज बाबा ने बहुत कुछ बताया है कैसे इस दुनिया को अभी आग लगनी है। एक थोड़ी सी आग लग जाए तो देखो भभोर को आग लग जाएगी और देर नहीं लगेगी। इसलिए जैसे रावण को भी जलाते हैं ना, तो एक चिंगारी केवल देते हैं और रावण धड़ 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 कैसे जलने लगता है। फटाके फूटते रहते हैं, अंदर में फटाके डालते हैं, वो फूटते रहते हैं और घास का ही होता है तो फटफट हाँ फटाफट जल जाता है और सब रावण से दूर होते जाते होते तो पहले नजदीक होते हैं और जैसे जलने लगता है सब दूर दूर भागते हैं, क्योंकि वो कभी भी गिरेगा। तो इसीलिए बचाते हैं अपने आप को। और रावण दिन प्रतिदिन कितना बड़ा बड़ा बनाते जा रहे हैं, यहाँ भी आज जलाएंगे जरूर पोलो ग्राउंड पर। तो आज की बाबा की मुरली कितनी प्रासंगिक है आज के दिन के लिए। और सतगुरु आ रहे तो बाबा ने सतगुरु को भी याद किया है। तो सुनते हैं बाबा के महावाक्य आज 2/10/2025 है। मीठे बच्चे, सबसे मीठा अक्षर कौन सा है? सबसे मीठा अक्षर कौन सा है? बाबा, बाबा। सबसे मीठा अक्षर बाबा है। तुम्हारे मुख से सदा बाबा बाबा निकलता रहे। सबको शिव बाबा का परिचय देते रहो। प्रश्न है, सतयुग में कोई मनुष्य तो क्या जानवर भी रोगी नहीं होते हैं। मनुष्य तो बड़ी बात है, परंतु जानवर भी रोगी नहीं होते हैं। नहीं तो आजकल क्या क्या रोगी है, जानवर भी कितने रोगी है। तो सतयुग में कोई मनुष्य तो क्या जानवर भी रोगी नहीं होते हैं? क्यों? उत्तर, क्योंकि संगम युग पर बाबा सभी आत्माओं का और बेहद सृष्टि का ऐसा ऑपरेशन कर देते हैं जो रोग का नाम निशान ही नहीं रहता। ऐसा ऑपरेशन बाबा करते हैं जो रोग का नाम निशान ही नहीं रहता। बाप है अविनाशी सर्जन। अभी जो सारी सृष्टि रोगी है, इस सृष्टि में फिर दुख का नाम निशान नहीं होगा। यहाँ के दुखों से बचने के लिए बहुत दुख आने हैं। बाबा कहते पहाड़ जितने दुख आने हैं, पहाड़ दुखों के पहाड़ गिरेंगे। तो बाबा कहते यहाँ के दुखों से बचने के लिए क्या करना पड़ेगा, क्या होना पड़ेगा हमें? बाबा कहते हैं यहाँ के दुखों से बचने के लिए बहुत बहुत बहादुर बनना है, बहुत बहुत बहादुर बनना है। कोई स्थूल बहादुरी की बात नहीं है, हम आत्मा इतनी बहादुर बन जाए। इसलिए देखो नवरात्रि मनाई, उसमें शक्तियों की पूजा हुई, शक्तियों को कितना बहादुर दिखाते हैं। और फिर दसवें दिन रावण का हनन किया ना, बहादुरी से ही तो रावण का हनन हुआ, या शक्तियों ने असुरों का नाश किया। तो बाबा कहते हैं इस सृष्टि में फिर दुख का नाम निशान नहीं होगा। तो यहाँ के दुखों से बचने के लिए बहुत बहुत बहादुर बनना है। गीत है, तुम्हें पाके हमने जहां पा लिया, जमी तो जमी आसमां पा लिया। ओम शांति, डबल भी कह सकते हैं ओम शांति, डबल ओम शांति। आत्मा अपना परिचय दे रही है, मैं आत्मा शांत स्वरूप हूँ। हमारा निवास स्थान शांति धाम है। तीन बार ट्रिपल ओम शांति भी कहते हैं, मैं आत्मा शांत स्वरूप हूँ, मेरा निवास स्थान शांति धाम है, और मैं शांति के सागर परमात्मा की संतान हूँ। ये तीन बार ओम शांति। आत्मा अपना परिचय दे रही है, मैं आत्मा शांत स्वरूप हूँ। हमारा निवास स्थान शांति धाम में है, और बाबा की हम सब शांति के सागर बाबा की हम सब संतान हैं। सब आत्माएं ओम कहती है, ओम अ ओम व ही मैं। ओम तो सब आत्माएं कहती है। वहां हम सब भाई भाई हैं, फिर यहाँ भाई बहन बनते हैं। अब भाई बहन से नाता शुरू होता है। शिव बाबा ब्रह्मा तन में आकर बच्चों को रचते हैं, तो एक पिता की सब संतान बन जाती है। तो फिर बाबा कहते हैं यहाँ बाबा आके भाई बहन रचते हैं। अब भाई बहन से नाता शुरू होता है। बाप समझाते हैं हमारे सब बच्चे हैं, ब्रह्मा की भी तुम संतान हो, इसलिए भाई बहन ठहरे, तुम्हारा और कोई संबंध नहीं है। शुरुआत तो भाई बहन से ही होगी ना, पहले भाई भाई, फिर दूसरा कदम है भाई बहन। हाँ, शुरुआत भाई बहन से होती है। और तुम्हारा कोई संबंध नहीं, प्रजापिता की संतान ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारी हो। पुरानी दुनिया को चेंज करने इस समय ही बाप आते हैं। बाप ब्रह्मा द्वारा ही फिर नई सृष्टि रचते हैं। ब्रह्मा से भी संबंध है, बहुत बड़ा संबंध है हमारा ब्रह्मा से। हाँ, कहीं कहते ना ब्रह्मा को, इनको क्यों बिठाए, इनको ब्रह्मा क्यों कहते हो? तो हम कहती है हमारा अलौकिक पिता है, बहुत बड़ा संबंध है हमारा इनके साथ, ब्रह्मा से भी संबंध है ना, तो युक्ति भी कितनी अच्छी है भाई बहन बनने की, कितनी अच्छी युक्ति है कि एक पिता की संतान है, युक्ति भी कितनी अच्छी है, सब ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारी है। अपने को आत्मा समझ बाप को याद करना है और अपने को भाई बहन समझना है। क्रिमिनल आई नहीं रहनी चाहिए, कल भी बाबा ने कहा ना आंखें बड़ी धोखेबाज है, इफट से क्रिमिनल आई ला देती है, देह पर आकर्षण हो जाता है, तो क्रिमिनल आई नहीं रहनी चाहिए। यहाँ तो कुमार कुमारी जैसे बड़े बड़े होते जाते हैं दुनिया में, हाँ छोटा बच्चा है तो चलो कोई क्रिमिनल आई नहीं होगी, लेकिन जैसे थोड़ा बड़ा होता जाता है तो आंखें क्रिमिनल बनती जाती है, फिर क्रिमिनल एक्ट कर लेते हैं। क्रिमिनल एक्ट होती है रावण राज्य में, सतयुग में क्रिमिनल एक्ट होती नहीं, कोई ऐसा बुरा काम पतित काम नहीं करता, क्रिमिनल अक्षर ही नहीं होता है। क्रिमिनल क्रिमिनल तो बहुत बड़ी चीज है, क्रिमिनल माना ऐसा अपराधी, इतना बड़ा अपराध करने वाला, तो क्रिमिनल अक्षर ही नहीं होता। यहाँ तो क्रिमिनल एक्ट बहुत है, उनके लिए फिर कोर्ट आदि भी है, वहां तो कोर्ट आदि भी कोई होती नहीं, वंडर है ना, सतयुग में न जेल न पुलिस न चोर न कोई कोर्ट न वकील न जज। हाँ देखो बाबा कहते क्या कैसी दुनिया होगी हमारी, ये सब है दुख की बातें, है ना, सारी दुख की बातें ना, जेल पुलिस चोर और कोर्ट और वकील और जज सब दुख की बातें जो यहाँ हो रही है, हो रही है। इसलिए बच्चों को समझाया गया है ये तो खेल है। हाँ बच्चे पूछते बाबा ऐसे क्यों है, बाबा कहते तो खेल है, सुख और दुख का खेल, हार और जीत का खेल, इनको भी तुम ही समझते हो। गाया हुआ है माया से हारे हार है, माया पर जीते जीत, तो माया पर जीत तो बाप ही आकर के आधा कल्प के लिए दिलाते हैं, फिर आधा कल्प हारना पड़ता है, कैसा ड्रामा है, आधा कल्प जीत पाते हैं फिर आधा कल्प माया से हार जाते हैं। पर ये कोई नई बात नहीं है, ये तो साधारण पाई पैसे का खेल है, हार और जीत पाई पैसे का खेल है। फिर तुम मुझे याद करते हो तो अपना राज्य भाग्य आधा कल्प के लिए ले लेते हो, माया से हारते हो फिर मुझे याद करते हो और तो फिर जीत पाते हो माया पर, फिर मेरे से आधा कल्प के लिए राज्य ले लेते हो। बाबा कहते पाई पैसे का खेल है, रावण राज्य में मुझे भूल जाते हो, रावण तुम्हारा दुश्मन है ना, उनको हर वर्ष भारतवासी ही जलाते हैं, जिस देश में बहुत भारतवासी होंगे वहां भी जलाते होंगे, कहेंगे ये भारतवासियों के धर्म का उत्सव है दशहरा। हाँ ऐसा रावण बनाते हैं दस सिर वाला और उसको जलाते हैं, ये भारतवासियों के धर्म का उत्सव है दशहरा मनाते हैं। तो बच्चों को समझाना है, वो तो है हद की बात, ऐसे बुत बना करके रावण को जलाना ये तो हद की बात है, रावण राज्य तो अभी सारे विश्व पर है ये समझाना है, सिर्फ लंका पर नहीं है, वो दिखा रहे हैं श्रीलंका जो पहले सिलोन उसका नाम था, तो सिलोन पर बाबा कहते थे ना उस दिन भी कहा ऐसे नहीं सिर्फ सिलोन में उसका राज्य था, लेकिन वो या लंका पर उसका राज्य था, सिर्फ लंका पर नहीं है, विश्व तो बहुत बड़ा है ना। बाप ने समझाया है ये सृष्टि सारी सागर सागर पर खड़ी है, मनुष्य कहते हैं नीचे एक बैल व गऊ है जिनके सींग पर सृष्टि खड़ी है, फिर थक जाता है तो टांगे बदलता है, कहते तीन अभी टांगे पर खड़ी है, एक टांग टूट गई है अब तीन टांगों पर खड़ा है बैल तो, और सिंगों पर सृष्टि है तो थक जाता है, तीन टांगों पर तो भूकंप आता है। हाँ, इसीलिए तो बाबा कहते हैं हाँ ऐसी तो कोई बात नहीं है। तो बाप ने समझाया है ये सारी सृष्टि तो सागर पर खड़ी है, मनुष्य कहते हैं नीचे एक बैल व गऊ है जिनके सिंग पर सृष्टि खड़ी है, फिर थक जाता है तो टांग बदलते हैं। अब ये बात तो है नहीं, तीन टांगे कौन सी है? हाँ, बाबा कहते हैं इस्लाम बुद्धिज्म क्रिश्चियनिटी ये तीन टांगे हैं, एक टांग टूटी हुई है, आदि सनातन देवी देवता धर्म की टांग टूटी हुई है। तो बाबा कहते हैं अब ये बात तो है नहीं, पृथ्वी तो पानी पर खड़ी है, कोई बैल की सिंग पर थोड़ी खड़ी होगी, चारों तरफ पानी ही पानी है। तो अभी सारी दुनिया में रावण राज्य है, फिर राम अथवा ईश्वरीय राज्य स्थापन करने बाप को आना पड़ता है। सिर्फ ईश्वर कहने से भी कह देते हैं, हाँ सिर्फ ईश्वर कह दिया तो मनुष्य क्या कहते हैं कि वो तो सर्वशक्तिवान है, वो सब कुछ कर सकता है, परमात्मा क्या नहीं कर सकता है, फालतू महिमा की जाती है, सब कुछ कर सकता है भगवान, ये लोग कहते, बाबा कहते फालतू महिमा है, भगवान कहते हैं मेरा तो एक ही काम है, बाकी तो मनुष्य करते हैं प्रकृति करती है, तो मेरा तो एक ही काम है पतितों को पावन बनाना। तो बाबा कहते हैं सिर्फ ईश्वर कहने से भी फिर कह दे तो ईश्वर तो सर्वशक्तिमान है सब कुछ कर सकते हैं, ये फालतू महिमा हो जाती है। इतना लव नहीं रहता है, अगर भगवान से सच्चा प्यार हो तो ऐसे नहीं कहे। यहाँ ईश्वर को बाप कहा जाता है, बाबा कहते हैं वर्षा मिलने की बात हो जाती है, खाली ईश्वर का तो वर्षे की खुशबू नहीं आती है, पर वो हमारा पिता है तो बाबा कहते हैं वर्षा मिलने की बात हो जाती है। शिव बाबा कहते हैं हमेशा बाबा बाबा कहते रहना चाहिए, ईश्वर व प्रभु आदि अक्षर भूल जाने चाहिए। बाबा ने कहा है माम एकम याद करो, प्रदर्शनी आदि में भी जब समझाते हो तो घड़ी घड़ी शिव बाबा का परिचय दो। शिव बाबा एक ही ऊंच से ऊंच है जिसको गॉड फादर कहा जाता है, बाबा अक्षर सबसे मीठा है। शिव बाबा मुख से निकलता है, मुख तो मनुष्यों का ही होगा, मुख से शिव बाबा मनुष्य ही निकालेंगे, गऊ का मुख थोड़ी हो सकता है, अब गऊ थोड़ी कहेगी शिव बाबा तुम हो शिव शक्तियां, तुम्हारे मुख कमल से ज्ञान अमृत निकलता है, तुम्हारा नाम बाला करने गऊ मुख कह दिया है, गऊ के मुख से गंगा निकली। तो बाबा कहते हैं तुम्हारा नाम बाला करने से गऊ मुख कह दिया है, गंगा के लिए ऐसे नहीं कहेंगे, अब वो जल थोड़ी ऐसे गऊ उसके मुख से निकलेगा, मुख तो मुख कमल से अमृत अभी निकलता है, ये मुख कमल है इनसे अमृत अभी निकलता है, ज्ञान अमृत पिया तो फिर विष तो पी न सके, अमृत पीने से तुम देवता बनते हो, अब मैं आया हूँ असुरों को देवता बनाने, तुम अभी देवी संप्रदाय बन रहे हो, संगम युग कब कैसे होता है ये भी किसको पता नहीं है, तुम जानते हो हम ब्रह्मा कुमार कुमारियां पुरुषोत्तम संगम युगी है, अभी न कलयुगी है न सतयुगी है पर पुरुषोत्तम संगम युगी है हम ब्रह्मा कुमार कुमारियां, बाकी जो भी है सब कलयुगी है, तुम कितने थोड़े हो, झाड़ की भी नॉलेज तुमको है, झाड़ पहले छोटा होता है फिर वृद्धि को पाता है, कितनी इन्वेंशन निकालते हैं कि बच्चा बच्चे पैदा कम कैसे हो, उस समय ये बहुत था फैमिली प्लानिंग बहुत करते थे, बहुत जनसंख्या बढ़ गई है फैमिली प्लानिंग के लिए, तो बाबा कहते इन्वेंशन निकालते रहते कि बच्चे पैदा कम कैसे हो, परंतु नर चाहत कुछ और और एक ही और भाई, मनुष्य चाहते हैं फैमिली प्लानिंग हो, हाँ बच्चे कम पैदा हो, लेकिन भगवान तो जानते हैं ना भगवान का प्लान क्या है, सब आत्माएं नीचे आ जाए तब फिर बाप आकर के फिर सबको ले जाए, ये भगवान का प्लान है। परंतु नर चाहत कुछ और, भाई कुछ और, हाँ भाई कुछ और, तो नर चाहत कुछ और एक ही और भाई, ऐसे कहते ना, मैन प्रपोजेस गॉड डिस्पोजेस। तो भाई कुछ और ही और, सबकी मृत्यु तो होनी ही है। अभी फसल बहुत अच्छी होगी, हाँ अभी देखो बाबा आज की हालत बता रहे हैं, मानो अभी फसल बहुत अच्छी हुई, बहुत अच्छी हुई, इतनी हरियाली, इतनी हरियाली, इतनी अच्छी फसल उगी हुई है, आई बरसात कितना नुकसान कर देती है, सारी फसल नष्ट हो जाती है, हाँ कितना नुकसान कर देती है। नेचुरल कैलेमिटीज को तो कोई समझ न सके, कोई बात का ठिकाना थोड़ी है, अभी अचानक कुछ भी हो जाए, हाँ कोई बात का ठिकाना थोड़ी है, अभी कहाँ फसल हो और बर्फ के ओले पड़ जाए, पड़ते ना ओले, सारी फसल खराब हो जाती है जब बर्फ के ओले पड़ते हैं फसल पर, तो कितना नुकसान हो पड़ता है। बारिश न पड़ी तो भी नुकसान, हाँ बहुत पड़ी तो भी नुकसान, इनको कुदरती आपदाएं कहा जाता है, नेचुरल कैलेमिटीज, और दुनिया वाले क्या कहते हैं, गॉडली कैलेमिटीज, ईश्वरीय आपदाएं नहीं है, ये प्राकृतिक आपदाएं हैं, ये प्रकृति का काम है, भगवान नहीं करते, ये तो ढेर होने वाली है। इनसे बचने के लिए बहुत बहादुर होना चाहिए। कोई का ऑपरेशन होता है तो कई वो देख भी नहीं सकते हैं, देखते ही अनकॉन्शियस हो जाते हैं, है ना, खून खून निकला, ऑपरेशन करते समय तो काटना पड़ता है ना, तो वो बेहोश हो जाते हैं, उस समय देखते ही अनकॉन्शियस हो जाते हैं। अभी इस सारी छी छी सृष्टि का ऑपरेशन होना है, सारी छी छी सृष्टि का ऑपरेशन होना है। बाप कहते हैं मैं आकर सबका ऑपरेशन करता हूँ, सारी सृष्टि रोगी है, अविनाशी सर्जन भी बाप का ही नाम है, वो सबसे बड़ा अविनाशी सर्जन है, वो सारे विश्व का ऑपरेशन कर देंगे, जो फिर विश्व में रहने वालों को कभी दुख नहीं होगा। कितना बड़ा सर्जन है, आत्माओं का भी ऑपरेशन, बेहद सृष्टि का भी ऑपरेशन, आत्माओं का भी ऑपरेशन, शरीरों का ऑपरेशन तो लौकिक सर्जन तो करते ही हैं, हद के सर्जन, लेकिन हाँ बाबा कहते हैं आत्माओं का भी ऑपरेशन, बेहद सृष्टि का भी ऑपरेशन करने वाला है बाबा। वहां मनुष्य तो क्या, जानवर भी रोगी नहीं होते हैं। तो बाप समझाते हैं मेरा और बच्चों का क्या पार्ट है, इसको कहते हैं क्या है, मेरा और मेरे बच्चों का क्या पार्ट है, इसको कहा जाता है रचयिता रचना के आदि मध्य अंत का ज्ञान, जो तुम अभी ले रहे हो। बच्चों को पहले पहले तो ये खुशी होनी चाहिए, इस बात की खुशी कि हम वो राज्य ले रहे हैं। और हाँ तो बाबा कहते हैं आज सतगुरुवार है, सतगुरुवार तो हमेशा सत बोलना चाहिए। व्यापार में भी कहते हैं ना सत बोलो, सच बोलो, ठगी की बात नहीं करो, सच बोलो। फिर भी लोभ में आकर कुछ जास्ती दाम बताकर सौदा कर देंगे, सच तो कभी कोई बोलते नहीं, बिजनेसमैन कहाँ सच बोलते हैं, सच तो कभी कोई बोलते नहीं, झूठ ही झूठ बोलते हैं, इसीलिए सत को याद करते हैं। कहते हैं ना, खास करके जब किसी अर्थी को ले जाते शमशान घाट में, पहले तो यही कहते थे, राम राम सत है, सत बोलो गत है, तो राम राम का नाम लो, क्योंकि वो राम नाम ही सत है, सत बोलो गत है। तो बाबा कहते हैं ना, सत नाम संग है, सत नाम संग है। अभी तुम जानते हो बाबा जो सत्य है वही संग चलेंगे। तो अर्थी को लेते जाते हैं और ये सत राम नाम सत है कहते जाते हैं, वही सत्य की सत्य ही साथ है, बाकी तो सब संसार झूठ है। अभी तुम जानते हो बाबा जो सत्य है वही संग चलेंगे हम आत्माओं के। अभी सत के साथ तुम आत्माओं का संग हुआ है, सत के साथ तुम आत्माओं का संग हुआ है, तो तुम ही साथ जाएंगे। जो जिनका सत के साथ संग हुआ है वही उस सत के साथ जाएंगे। तुम बच्चे जानते हो शिव बाबा आया हुआ है, जिसको ट्रुथ कहा जाता है। सत माना इंग्लिश में ट्रुथ कहते हैं, सत को ट्रुथ कहा जाता है। वो हम आत्माओं को पवित्र बनाकर साथ ले जाएंगे एक ही बार। सतयुग में ऐसे नहीं कहते हैं, वहां जब डेड बॉडी को ले जाएंगे सतयुग में तो वहां ऐसे नहीं कहेंगे कि राम राम सत है, सत नाम संग है, वहां ऐसे नहीं कहेंगे। क्यों नहीं कहेंगे? हाँ, क्यों नहीं कहेंगे? क्योंकि वहां तो राम राम तो कोई बोलता भी नहीं होगा, और वो तो है ही सदा सत। तो इसीलिए बाबा कहते हैं वहां ऐसे नहीं कहेंगे। बाप कहते अभी मैं तुम बच्चों के पास आया हूँ, नैनों पर बिठाकर ले जाता हूँ। तो कितना हल्का होना चाहिए जो नैनों पर बिठा सके बाबा। नैनों पर बिठाए ले जाता हूँ, ये नैन नहीं, ये दो नैन नहीं, तो कौन से नैनों नैन पर बाबा बिठा के ले जाते हैं? बाबा कहते तीसरा नेत्र। वो तीसरा नेत्र तो मेरे पास, इसलिए शंकर को तीसरा नेत्र देते हैं, देवियों को भी तीसरा नेत्र दिखाते हैं। तो उस नेत्र पर जो बाबा के पास है उसी नेत्र पर बिठा करके आत्माओं को ले जाते हैं। तो बाबा कहते हैं नैनों पर बिठाए ले जाता हूँ, ये नैन नहीं, तीसरा नेत्र। तुम जानते हो इस समय बाप आए हैं साथ ले जाएंगे। इसलिए दिखाते ना शंकर की तपस्या किसने भंग की, तो शंकर ने तीसरी आंख खोली, और जैसे तीसरी आंख खोली तो सबको भस्म कर दिया। तो बाबा कहते हैं तो तीसरी आंख पर तुम ले जाएंगे। तो तुम जानते हो इस समय बाप आए हैं साथ ले जाएंगे। शंकर की बारात नहीं है, ये तो शिव के बच्चों की बारात है। किसकी बारात है? शिव के बच्चों की बारात है। वो पतियों का पति भी है। कहते हैं तुम सब ब्राइड्स हो, मैं हूँ ब्राइड ग्रूम। तुम सब आशिक हो, मैं हूँ माशिक, मैं हूँ माशुक। माशुक तो एक ही होता है ना। तुम आधा कल्प से मुझ माशुक के आशिक हो। अभी मैं आया हूँ सब भक्तियों को, हाँ भगवान ले जाएंगे, आशिकों को माशूक घर ले जाएंगे। भक्तों की रक्षा करने वाला है भगवान। आत्मा भक्ति करती है शरीर के साथ, सतयुग त्रेता में तो भक्ति होती ही नहीं। भक्ति का फल सतयुग में भोगते हो, भक्ति की दरकार नहीं है, पर भक्ति का फल जो ज्ञान इस समय बाबा देते हैं, उस ज्ञान के आधार से जो फल मिलता है वो तुम सतयुग में भोगते हो। तो कहेंगे भक्ति का फल तुम सतयुग में भोगते हो, जो अब बच्चों को दे रहे हैं वो तुम, जो अब बच्चों को दे रहे हैं वो तुम्हारा माशूक है, जो तुमको साथ ले जाएंगे। फिर तुम अपने पुरुषार्थ अनुसार जाकर राज्य भाग्य लेंगे। ये कहां भी लिखा हुआ नहीं है, ऐसे लिखा हुआ नहीं कि भगवान सबको ले जाएंगे, ये तो है ठीक, लेकिन फिर आकर के अपना अपना पुरुषार्थ अनुसार राज्य भाग्य लेंगे, ये बाबा कहते कहीं लिखा हुआ नहीं है। कहते हैं शंकर ने पार्वती को अमर कथा सुनाई। तुम सब हो पार्वतियां, मैं हूँ कथा सुनाने वाला अमरनाथ। अमरनाथ एक को ही कहा जाता है। ऊंच से ऊंच तो बाप है, उनको तो अपनी देह नहीं है। कहते हैं मैं अमरनाथ हूँ, तुम बच्चों को अमर कथा सुनाता हूँ। शंकर पार्वती यहाँ कहाँ से आए? वो तो है ही सूक्ष्म वतन में, जहाँ सूर्य चांद की भी रोशनी नहीं रहती है। सूक्ष्म वतन में भी सूर्य चांद की रोशनी नहीं रहती है, परमधाम में तो ऐसे ही रहती नहीं। सत्य बाप अभी तुमको सत्य कथा सुनाते हैं। बाप बिगर सच्ची कथा कोई सुना न सके। सत्य नारायण की कथा कौन सी है? नर से नारायण बनने की कथा। बाबा कहते ये बाप बिगर सच्ची कथा कोई सुना न सके। ये भी समझते हो विनाश होने में टाइम लगता है। विनाश होने में टाइम लगता है। बाबा ने कहा न कर्मातीत बने तब तो वो विनाश हो। तैयारी तो हो चुकी है पर क्यों नहीं हो रहा है कि बच्चे कर्मातीत नहीं बने हैं? तो बाबा कहते ये भी समझते हो विनाश होने में टाइम लगता है। कितनी बड़ी दुनिया है, कितने ढेर मकान आदि गिरकर खत्म होंगे। सोचो तो बिल्कुल ऊंची ऊंची इमारतें बनाते जा रहे हैं और ये सब गिरेंगे। इतनी सारी इमारतें गिरेगी ताश की पत्तों की तरह, बाबा कहते हैं गिरकर खत्म होंगे। अर्थक्वेक में कितना नुकसान होता है। अभी तो चलो छोटे छोटे अर्थक्वेक होते हैं, 3.5, 4.4 या चलो 5 तक, 6 में तो बहुत नुकसान होता है। अगर 7, 8, 9 हो जाए तो सब खत्म। ऐसा हाल अर्थक्वेक में कितना नुकसान होता है, कितने मरते हैं। बाकी तुम्हारा ये छोटा सा झाड़ होगा, दिल्ली परिस्थान बन जाएगी। एक ही परिस्थान में लक्ष्मी नारायण का राज्य चलता है। यहाँ क्या होगा फिर वहां क्या होगा, बाबा कैसे कॉन्ट्रास्ट कर बताते हैं। एक ही परिस्थान में लक्ष्मी नारायण का राज्य चलता है। कितने बड़े बड़े महल बनते होंगे। हाँ लंबे लंबे मकान नहीं, चौड़े चौड़े, क्योंकि जमीन की तो कोई कमी नहीं होगी। तो बाबा ने एक बार कहा था कि पहला मंजिला भी नहीं बनेगा, जरूरत ही नहीं है। कोई लिफ्ट थोड़ी लगाएंगे और देवताएं कोई सीढ़ियां थोड़ी चढ़ेंगे, सब धरती बहुत होगी। तो कितने बड़े बड़े महल बनते होंगे, बेहद की जागीर मिलती है। इतनी जमीन हो जाती है, बेहद की जागीर मिलती है। तुमको कुछ खर्चा नहीं करना पड़ता है। बाबा कहते हैं इनकी यानी ब्रह्मा की लाइफ में भी कितना सस्ता अनाज था। प्रभावा बताते थे मण के मण अनाज घर में पड़ा रहता था, कोई कमी नहीं होती थी, कितना सस्ता था अनाज। तो कितना सस्ता अनाज था, तो सतयुग में कितना सस्ता होगा। बाबा के समय में इतना सस्ता था तो सतयुग में सब कितना सस्ता होगा। दिल्ली जितने तो एक एक के घर और जमीन आदि होगी, पूरी दिल्ली जितनी एक एक के घर और जमीन आदि होगी। मीठी नदियों पर तुम्हारा राज्य चलेगा। पहुंच जाओ सतयुग में, मीठी नदियों पर तुम्हारा राज्य चलेगा। वहां न सागर के किनारे पर जाने की जरूरत पड़ेगी, न पहाड़ों पर जाने की जरूरत पड़ेगी, मीठी नदियों पर ही सब होंगे। तो मीठी नदियों पर तुम्हारा राज्य चलेगा। एक एक को क्या नहीं होगा, क्या वर्णन करे, क्या नहीं होगा एक एक को। सदा अन्न मिलता रहेगा। वहां के फल फूल भी कितने फल फूल भी देखते हो, कितने बड़े बड़े होते हैं। संदेशियां ध्यान में जाती थी तो वो तो बाबा कहते थे शुभी रस बाबा पिलाते थे तो बहुत मीठा होता था। हाँ वो कहती थी, लेकिन वो तो बाबा कहते सूक्ष्म वतन में थोड़े पेड़ होंगे जो वहां आम लटके होंगे और वहां से शुभी रस पियेंगी। तो सतयुग का साक्षात्कार करते थे और वहां का जैसे शुभी रस पी के आते थे, आम का जो रस है वो पी के आते थे। तो बाबा कहते हैं वहां के फल फूल भी देखते हो कितने बड़े बड़े होते हैं, तुम शुभी रस पीकर आते हो। कहते थे वो संदेशी आकर के कहती थी वहां माली है, सतयुग में माली होगा ना, तो वो सतयुग में जाती थी, कहती थी वहां माली है। अब माली तो जरूर वैकुंठ में अथवा नदी किनारे होगा, बगीचा होगा, वहां पेड़ लगे होंगे नदी किनारे, तो वहां भी माली होगा जो सहज वो पेड़ों पेड़ से आम निकाला, ऐसे किया, जूस निकल आई। हाँ, तो बाबा कहते हैं ये सब साक्षात्कार करते थे, तो जरूर वैकुंठ में अथवा नदी किनारे होगा माली भी, वहां कितने थोड़े होंगे, कहां अभी इतने करोड़ों और कहां सतयुग आदि में केवल 9 लाख होंगे, और सब कुछ तुम्हारा होगा, कोई हदे नहीं होगी, सब कुछ तुम्हारा होगा। बाप ऐसी राजाई देते हैं जो हमसे कोई छीन न सके, आसमान धरती आदि सब के मालिक तुम रहते हो। गीत भी बच्चों ने सुना, ऐसे ऐसे गीत 6-8 हो जो सुनने से ही खुशी का पारा चढ़ जाए। देखो अवस्था में कुछ गड़बड़ है तो गीत बजा लो, वो है खुशी के गीत। तुम तो अर्थ भी जानते हो, गीत भी था ना, कौन सा गीत था, कौन सा गीत था बाबन, इस तुमी तुम्हें पाके हमने जहां पा लिया, जमी तो जमी आसमान पा लिया। तो बाबा कहते हैं वहां कितने थोड़े होंगे, अभी कितने करोड़ों हैं, तो बाबा ऐसी राजाई देते हैं जो हमसे कोई छीन न सके। तो कभी भी कुछ ऐसा अवस्था ठीक न हो तो बाबा कहते हैं ऐसे गीत होने चाहिए जो आसमान धरती आदि सब के मालिक तुम रहते हो। गीत भी बच्चों ने सुना, ऐसे ऐसे गीत 6-8 हो जो सुनने से ही खुशी का पारा चढ़ जाए। देखो अवस्था में कुछ गड़बड़ है, अभी मेरी अवस्था ठीक नहीं है, मूड ठीक नहीं है, तो ऐसे गीत बजा लो, गीत बजा लो, ये है खुशी के गीत। तुम तो अर्थ भी जानते हो, बाबा बहुत युक्तियां बतलाते हैं अपने को हर्षित बनाने की, हर्षित बनाने की बाबा युक्तियां बताते, गीत बजा दो। बाबा को लिखते हैं, बाबा इतनी खुशी नहीं रहती है, अब ये पत्र में बाबा को लिखते, बाबा इतनी खुशी नहीं रहती है, माया के तूफान आते हैं। अरे बाबा कहते माया के तूफान आए, तुम बाजा बजा लो, बाजा बजा लो, माना वो ग्रामोफोन को बाबा बाजा कहते थे, तो जब बाबा आते थे ना तो बाबा तो उस समय वो बहन बाजा बजाती थी, अधिकतर चंद्रहास भाई होते थे या कभी लच्छू बहन होती थी, तो बाबा बाजा उस समय तो गीत बजता था, फिर कभी बाबा बीच में भी गीत बजवाते थे, बाबा कहते बाजा बजाओ, बाजा बजाओ, माना वो रिकॉर्ड फिर से बजाओ। तो बाबा कहते हैं तुम बाजा बजा लो, गीत शुरू कर दो। खुशी के लिए बड़े बड़े मंदिरों में भी फाटक पर बाजा बजता है ना, बड़े हॉर्न होते हैं, तो वो कैसे वहां पर गीत भी बजते रहते हैं, भजन बजते रहते हैं। बॉम्बे में माधव बाग में लक्ष्मी नारायण के मंदिर के फाटक पर भी बाजा बजता रहता है। तुमको कहते हैं ये फिल्मी रिकॉर्ड क्यों बजाते हो, क्योंकि तो है तो सब फिल्मी गीत ना, तो बाबा कहते हैं उनको क्या पता कि ये भी ड्रामा अनुसार काम में आने की चीज है। उस समय जो बाबा गीत बजवाते थे मुरली के ये गीत, तो बाबा कहते हैं वो ड्रामा अनुसार काम में आने की चीज है, उनको क्या पता, इसलिए वो कहते हैं आप लोग फिल्मी गीत क्यों बजाते हो। इनका अर्थ तो तुम बच्चे ही समझते हो, ये सुनने से भी खुशी में आ जाएंगे, परंतु बच्चे भूल जाते हैं, घर में किसको गमी होती है, कोई दुख होता है तो भी गीत सुनकर बड़े खुश होंगे, ये बहुत वैल्यूबल चीज है ये गीत। बाबा कहते हैं बहुत वैल्यूबल चीज है, कोई के घर में झगड़ा चलता है तो बोलो भगवानो वाच काम महाशत्रु है, विकार पर झगड़ा चलता है, तो बोलो काम महाशत्रु है, इन पर जीत पाने से हम विश्व के मालिक बनेंगे, फिर फूलों की वर्षा होगी। विश्व के मालिक बनेंगे तो फूलों की वर्षा होगी, जय जयकार हो जाएगी, सोने के फूल बरसेंगे। तुम अभी कांटे से सोने के फूल बन रहे हो ना, सोने के फूल बन रहे हो, फिर तुम्हारा अवतरण होगा। सुना, देखो बाबा ने बड़ी वंडरफुल बात सुनाई है। तो अभी तुम कांटे से सोने के फूल बन रहे हो, फिर तुम्हारा अवतरण होगा। फूल नहीं बरसते लेकिन तुम फूल बनकर आते हो। फूल नहीं बरसते हैं लेकिन तुम फूल बनकर आते हो। मनुष्य समझते हैं सोने के फूल बरसते हैं। एक राजकुमार विलायत में गया, वहां पार्टी दी थी, उनके लिए सोने के फूल बनवाए। कोई उस समय राजा होगा तो वो उसका वो बेटा पढ़ करके पास होके, पटियाला का राजा बाबा कहते थे, तो वो जब पास होके आया विदेश से तो वहां उनके पिता ने वहां सोने के फूल बरसाए थे, पंखड़ियां बरसाई थी उनके ऊपर सोने की, उनके लिए सोने के फूल बनवाए, सबके ऊपर वर्षा की। खुशी के मारे इतनी खातरी की उस बच्चे की कि विदेश से पढ़ के आया है, खुशी के मारे इतनी खातरी की, अब सच्चे सच्चे सोने के बनाए वो फूल। बाबा उनकी स्टेट आदि को भी अच्छी रीति जानते हैं, पटियाला का वो राजा बाबी और मुरलियों में वर्णन किया, वो इतना धनवान था जो उसने सोने के फूल बनाए और उनकी पंखड़ियां और वो कैसे बरसाई। बाबा उनकी स्टेट आदि को भी अच्छी रीति जानते हैं, वास्तव में तुम फूल बनकर आते हो। अभी फूल गिराने की बात नहीं है, सोने के अभी गिरे तो लगते हैं ना, हम लोग भी कहीं जाते हैं ऊपर से फूल बरसाते हैं, और परंतु वो क्या करते हैं, फूल तो बरसाते हैं लेकिन वो जो उनका जो अंदर की डंडी होती है ना उसके साथ बरसाते हैं। तो उनको कहते हैं भाई ये तो मत बरसाओ, सिर पर लगता है। हाँ, फिर उनको कहते फूल भी नहीं बरसाओ, फिर वो नीचे पैरों तले बरसाते हैं ताकि उन पर चले। तो बाबा कहते हैं, बाबा उनकी, हाँ, वास्तव में तुम फूल बनकर आते हो, सोने के फूल तुम ऊपर से उतरते हो, वो फूल नहीं बरसाते पर सोने के फूल तुम ऊपर से नीचे उतरते हो। तुम बच्चों को कितनी लॉटरी मिल रही है विश्व के बादशाही की, जैसे लौकिक बाप बच्चों को कहते हैं तुम्हारे लिए ये लाया हूँ, तो बच्चे कितने खुश होते हैं। हाँ, बच्चे जैसे वो पिता घर पहुंचा, आप डैडी क्या लाए हो क्या लाए हो, तो डैडी दिखाएगा मैं ये लाया हूँ ये लाया हूँ। हाँ, तो बाबा कहते हैं तुम विश्व की बादशाही की तुमको लॉटरी मिलती है, तो जैसे लौकिक बाप बच्चों को कहते हैं तुम्हारे लिए ये लाया हूँ, तो बच्चे कितने खुश होते हैं। बाबा भी कहते हैं तुम्हारे लिए बहिष्ट लाया हूँ, तुम वहाँ राज्य करेंगे तो कितनी खुशी होनी चाहिए। कोई को छोटी सौगात देते हैं तो कहते हैं बाबा आप तो हमको विश्व की बादशाही देते हो, ये सौगात क्या है। हाँ, बाबा तो विश्व की बादशाही देते हैं। अरे शिव बाबा की यादगार साथ रहेगी तो शिव बाबा की याद रहेगी। बाबा तो मधुबन में आते हैं, भट्टी होती है तो चद्दर की सौगात देते हैं, या अभी सीजन आएगी सबको शॉल की सौगात देंगे, तो बच्चे तो बहुत प्यार से स्वीकार करते हैं। और फिर बाबा कहते हैं शिव बाबा की यादगार साथ रहेगी तो शिव बाबा की याद रहेगी। छोटी सौगात भी बाबा के घर से मिलती है तो वो अगर जब पहनते हैं तो बाबा की याद रहती है, हमको मधुबन से ये मिली थी, तो शिव बाबा की याद रहेगी और तुमको पदम मिल जाएंगे। अच्छा, मीठे मीठे सिक्की लदे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग, रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार पहला सत के संग वापिस जाना है, इसलिए सदा सच्चा होकर रहना है, कभी भी झूठ नहीं बोलना है। दूसरा, हम ब्रह्मा बाबा के बच्चे आपस में भाई बहन हैं, इसलिए कोई भी क्रिमिनल एक्ट नहीं करना है। भाई भाई और भाई बहन के सिवाय और किसी संबंध का भान न रहे। वरदान, याद के बल से अपने व दूसरे के श्रेष्ठ पुरुषार्थ की गतिविधि को जानने वाले मास्टर त्रिकालदर्शी भव। याद के बल से अपने व दूसरे के श्रेष्ठ पुरुषार्थ की गतिविधि को जानने वाले मास्टर त्रिकालदर्शी भव। जैसे साइंस वाले पृथ्वी से स्पेस में जाने वालों की हर गतिविधि को जान सकते हैं, नीचे बैठे वो कंट्रोल रूम में ऊपर स्पेस में जहाँ गया है रॉकेट उसको देख सकते हैं, और टीवी द्वारा कहाँ गया का, तो बाबा कहते वो सब जान जाते हैं। ऐसे आप त्रिकालदर्शी बच्चे साइलेंस अर्थात याद के बल से अपने व दूसरों के श्रेष्ठ पुरुषार्थ व स्थिति की गतिविधि को स्पष्ट जान सकते हो। दिव्य बुद्धि बनने से, याद के शुद्ध संकल्प में स्थित होने से त्रिकालदर्शी भव का वरदान प्राप्त हो जाता है और नए नए प्लान प्रैक्टिकल में लाने के लिए स्वतः इमर्ज होते हैं। नई नई प्लान प्रैक्टिकल में लाने के लिए स्वतः इमर्ज होते हैं। स्लोगन, सर्व के सहयोगी बनो तो स्नेह स्वतः प्राप्त होता रहेगा। सर्व के सहयोगी बनो तो स्नेह स्वतः प्राप्त होता रहेगा। अव्यक्त इशारे, तो इस महीने के अव्यक्त इशारों का टाइटल है स्वयं और सर्व के प्रति मनसा द्वारा योग की शक्तियों का प्रयोग करो। उसके अंतर्गत कोई भी ये नहीं कह सकता कि हमको तो सेवा का चांस ही नहीं है। कोई बोल नहीं सकते तो मनसा वायुमंडल से मानो मुख से नहीं निकलता ज्ञान, तो मनसा वायुमंडल से सुख की वृत्ति सुखमय स्थिति से सेवा करो। तबीयत ठीक नहीं है तो घर बैठे भी सहयोगी बनो। सिर्फ मनसा में शुद्ध संकल्पों का स्टॉक जमा करो, शुभ भावनाओं से संपन्न बनो। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। ओम शांति। आज विजयदशमी है और विजयदशमी के आप सबको बहुत बहुत मुबारक हो, मुबारक हो। बाबा हमेशा कहते हैं ये आप बच्चों की ही निशानी है, तो बाबा भी हम बच्चों को सदा उमंग उत्साह दिलाते रहते हैं। इसके साथ साथ आज 2 अक्टूबर गांधी जयंती भी है और पूरे भारत के अंदर विशेषकर विजयदशमी पर भी
बहुत महोत्सव मना रहे हैं, खुशियां मना रहे हैं, और विजयदशमी के दिन शाम के टाइम रावण भी जलाते हैं, लेकिन बाबा के बच्चे तो रावण को जलाते रहते हैं, जैसे दुनिया वाले भी रावण को जलाते हैं। हर साल बड़ा होता जाता है, कभी कभी रावण भी अपना रूप अलग अलग स्थानों पर अपना अलग ही दिखाता है। इसलिए बाबा कहते हैं इस पर विजय पानी है, और विजय तो मिलेगी ही। बाबा ने बच्चों को विशेष इसके लिए शक्ति भी दी है, और फिर हम बाबा को आज आप सबकी तरफ से बाबा को याद प्यार भी देंगे, भोग भी स्वीकार कराएंगे, और वतन में सब जाएंगे बाबा के साथ आज का दिन मनाने के लिए। और बाबा भी बच्चों को बहुत प्यार से ही इस दिन की बहुत बहुत बधाइयां भी देते हैं और वरदान भी देते हैं। भोग के बाद बाबा जो सुनाएंगे वो सुनेंगे, और उसके बाद चार लाइन में अमृत होगा, एक लाइन भाइयों की होगी, एक लाइन फॉरेनर्स और टीचर्स बहने हाथ खड़ा करें, फॉरेनर्स और टीचर बहने यहाँ पर आएंगे जहाँ ये कैमरा है इस साइड में आएंगे, और दो लाइनें अन्य बहनों की होंगे। अच्छा, जो शांतिवन से एक रात के लिए हाथ खड़ा करें या सुबह सुबह आए हैं, तो आप सबके ध्यान पर रहे कि आप सबका सुबह का नाश्ता ऊपर के बड़े डाइनिंग हॉल में होता है, तो इसलिए इस बात का भी सबको ध्यान रखना है। कल तो मौसम कुछ थोड़ा ऊपर नीचे था, आज थोड़ा ठीक है, प्रकृति का भी कुछ ना कुछ खेल तो चलता ही रहता है। जैसे कल भी आज भी बाबा ने कहा प्रकृति भी अपना कुछ ना कुछ दिखाती रहती है, लेकिन हमारी दुनिया में क्या होगा, सोने के फूलों की वर्षा होगी। लेकिन बाबा ने उसको स्पष्ट भी कर दिया, सच में सोने के फूल नहीं, आप सोने के फूल जैसा ही पैदा होंगे, फोन बंद करके ही इस सतयुगी नई दुनिया में आएंगे। तो आज हम वो भी अनुभव करेंगे जो बाबा हम बच्चों को बता रहे हैं। अच्छा, ओम शांति।
महिमा अपरंपार तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद में जीते हैं बाबा, तेरी याद में जीते हैं बाबा, तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद का अमृत पीते हैं, रहे याद सदा ही साथ तेरी, रहे याद सदा ही साथ तेरी, बस और न हम कुछ चाहेंगे, बस और न हम कुछ चाहेंगे, तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद का अमृत पीते हैं।
जो भी माताएं खड़े हो गए हैं आप अपने अपने स्थान पर प्लीज बैठ जाएं, जल्दी ना करें। अभी प्यारे बाप दादा का संदेश सुनेंगे, उसके बाद आपको अमृत के लिए बुलाया जाएगा।
शांति। आज सतगुरुवार के दिन विशेष सभी भाई बहनों के यादों के साथ, जैसे ही मैं वतन में पहुंची तो वतन में जाते ही क्या देखती हूँ, बाबा के सामने सब भाई बहने पहले से ही बाबा के सामने खड़े थे और बाबा सबको दृष्टि के द्वारा निहाल कर रहे थे। बाबा ने कहा, बच्चे आज के दिन बच्चों को क्या संकल्प चल रहा है, तो सब मुस्कुराते हैं। बाबा के बच्चे कहते हैं, बाबा हमें तो बहुत खुशी हो रही है, बाप का साथ है। तो फिर बाबा ने क्या दिखाया कि सामने एक तरफ अलग अलग प्रकार के दृश्य दिखाई दे रहे थे, कहां सेलिब्रेशन, कहां खुशी, कहां फटाके। तो वो सब दृश्यों को देखकर कई बच्चे तो उन दृश्यों में ही समा गए थे और कई ऐसे थे जो उनको न्यारे और प्यारे होकर के देख रहे थे और कई ऐसे थे जो अपनी वास्तविक स्थिति का स्वरूप और अनुभव कर रहे थे। बाबा ने कहा, दुनिया के अंदर टेम्परेरी प्राप्ति में और टेम्परेरी खुशी में वो ना जाने कितना खुश और एक सेकंड के अंदर किस प्रकार से दुखों में खो जाते हैं, लेकिन बाबा चाहते हैं कि ऐसी परिस्थितियों में मेरे सब बच्चे अपने सोमान और अपने वास्तविक स्वरूप की स्थिति में रहे, तभी जीवन के अंदर ब्राह्मण जीवन की सफलता और विश्व के अंदर प्रत्यक्षता है। फिर बाबा ने कहा, देखो आज के दिन कौन सा यादगार मना रहे हैं, एक तरफ यादगार मना रहे हैं लेकिन ये यादगार है त्याग, तपस्या, सहनशीलता और विजय का यादगार है। बाबा ने कहा, ये यादगार आप बच्चों का है, त्याग भी कर रहे हैं, तपस्या भी कर रहे हैं, ईश्वर मार्ग पर काफी बातें सहन की और बच्चों को सफलता भी प्राप्त हो रही है। तो जैसे ऐसे कहा तो बाबा ने क्या देखा और चारों तरफ बच्चे खुशी में झूम रहे थे, तो बाबा ने कहा, आज बाबा बच्चों को एक बहुत सुंदर गिफ्ट देंगे और गिफ्ट में बाबा ने ऐसे हाथ किया, एक छोटे से बॉक्स के अंदर दो क्रिस्टल के बॉल दिखाई दे रहे थे और बॉक्स के ऊपर लिखा था स्वस्थिति का स्वरूप। तो बाबा ने वो बॉक्स सबको दिया और जो बच्चे अपनी स्वस्थिति में स्थित थे तो बॉक्स ऑटोमेटिक खुलता था और पहले क्रिस्टल के बॉल पर लिखा हुआ था विजयी भाव। और दूसरे क्रिस्टल के बाल पर लिखा हुआ था, सफलता जन्म से अधिकार है, और बीच में लिखा हुआ था विश्व कल्याणकारी और विश्व महाराजन भाव। तो बाबा ने वो बॉक्स दिया और जैसे बच्चे उस बॉक्स को लेते हैं, कईयों का तो खुलता है और कईयों का वो बॉक्स खुलता नहीं था। बाबा ने फिर याद दिलाया, बच्चे बाप ने बच्चों को कितना ऊंच महान बनाया है, तो अपने उस ओरिजिनल स्वरूप में टिको। तो जैसे वो अपने ओरिजिनल स्वरूप में टिकते हैं तो उसी समय बॉक्स भी खुलता है। और जो क्रिस्टल बॉल थे उसमें से पहली बॉल में से जैसे विश्व के महाराजा और महारानी का स्वरूप दिखाई दिया, और दूसरे बॉल के अंदर पूरी राजधानी का स्वरूप दिखाई दे रहा था, और बीच में जो लिखा हुआ था विश्व कल्याणकारी उसमें सब फरिश्ते। तो बाबा ने कहा कि बाप ने बच्चों को विश्व कल्याणकारी का जिम्मेवारी दी है और ताज पहनाया है, और बच्चों की सफलता विजय तो निश्चित है, और बच्चों को जो है उस स्वरूप के द्वारा एक तो विश्व के सामने प्रत्यक्षता का झंडा लहराना है और बाप के कार्य को संपन्न करना है। तो बाबा ने कहा कि विजय निश्चित है, वो एक कदम पर है, लेकिन बच्चे अब तक उस स्वरूप पर नहीं पहुंचे हैं। तो बाबा ने कहा कि अब ये समय आने वाला है, बाप की प्रत्यक्षता भी होगी और बच्चों की विजय तो होनी ही है, लेकिन बच्चों को क्या करना है। जैसे कलयुग दुनिया में रावण के बारे दिखाते हैं कि सब कुछ होते हुए भी अहम उसको ले गया, तो ऐसे ही बाबा कहते हैं ज्ञानी तो आत्मा योगी तो आत्मा, इन बच्चों को विशेष करके जो अहम के बीच बीच में तूफान या परीक्षा या कोई न कोई प्रकार की बाधाएं आती हैं, तो इन बाधाओं को बच्चों को विशेष अपने स्वरूप में टिक करके इन बाधाओं को पार करना है। फिर बाबा ने जैसे सबको फिर फरिश्ता रूप दिखाया और सबको एक सोमान के सीट पर बैठे थे, पुष्पक विमान की तरह था, और वो पुष्पक विमान के अंदर बहुत से राजाएं महाराजाएं सजे हुए सारे विश्व के अंदर चक्कर लगा रहे थे। बाबा ने कहा अपनी नई दुनिया दूर नहीं है, और उस दुनिया का पुष्पक विमान में सो स्थिति में रहकर चक्कर लगाते रहे। तो बाप को ही बच्चों के इस स्वरूप को देखकर खुशी भी है, और बाबा को इस बात का बच्चों के ऊपर विशेष ध्यान भी है कि मेरे विजयी रतन हैं और पूरे विश्व पर राज्य करने वाले। फिर तो ऊपर से क्या हुआ, चारों ही तरफ गोल्डन लाइट के द्वारा सबके ऊपर बहुत सुंदर सजावट हो रही थी। बाबा ने कहा बाबा अब बच्चों को उनके उस ओरिजिनल स्वरूप में देखना चाहते हैं, लेकिन बाप ने जो वरदान दिए हैं खुद भी धारण करें औरों को भी बांटते जाए। फिर बाबा को भोग स्वीकार कराया, बाबा ने वही जो बॉक्स दिखाया था वो फिर सब बच्चों के हाथ में था, और बच्चे उस बॉक्स को खोल खोल करके देख भी रहे थे, खुश भी हो रहे थे और उसी स्वरूप का अनुभव भी कर रहे थे। फिर बाबा ने सबको याद दिया ओम शांति।